बोलो लाडली लाल की श्रीमत सद्गुरु सरकार की. We'll be singing from Doha number 75 today in the Bhakti Shatak. Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. 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 Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe. Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna. Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna. Manmohan bhajan kar, man manmohan bhajan kar. Sahaj Sanehi Maan Radhe Radhe. Meine, meine Mohane, bhajane kare, sajane sanehi, mane radhe radhe. बिनु ही बुलाए आई हैं जग विराग अरुज्ञान राधे राधे बिनु ही बुलाए आई हैं जग विराग अरुज्ञान राधे राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे In this Bhakti Shatak, Shri Kripaluji Maharaj is describing in many beautiful dohas the greatness of the path of bhakti. This doha tells us something amazing about bhakti. A lot of people think that meaning, people who don't really understand what bhakti is, they think that bhakti is just attachment of the mind, which is considered in a spiritual sense. People think, oh no, attachment is bad. And bhakti is just attachment. It's like a weakness of the mind. On the path of jnana, on the path of yoga, we detach our mind from the world using our force of will. We keep our mind out of worldly things. The path of bhakti, oh, you just love Krishna. So it's just attachment of the mind. They think it's not a great thing. So here, Shri Kripaluji Maharaj is explaining that that attachment to Shri Krishna is very powerful. Namaya veshitadhyam. In the Bhagavatam, Shri Krishna says, the one who attaches their mind to me, all of their worldly desires get burnt forever. Like a seed that you put in the oven. Before you roast it, the seed has the power to germinate. But once it's been roasted, that power is finished forever. The seed of mayic desires that lies in our heart gets roasted by our love for Shri Krishna. Love for God is no small thing. It's the most powerful thing. It is deceptive because sometimes people think when something is simple to explain or easy in terms of practice, that maybe it's not as powerful. But just because attaching your mind to Shri Krishna is a very simple thing to practice, doesn't mean that it's not powerful. In fact, it's the most powerful. So Shri Maharaj Ji here says, Man Mohan. Man Mohan means Shri Krishna, the stealer of hearts. Oh my heart, attach yourself to the stealer of hearts, Shri Krishna. Bhajan kar, love him, do devotion to him, adore him. Sajana sanehi man, knowing him to be the beloved of your soul. Knowing him to be your everything. And then what will happen? Binuhi bulaye aayi hain, jagavirag arugyan. Bhakti pareshanubhavo virakti ranyatra traishat. Trika eka kala. Also in the Bhagavatam, it's explained that jnana and vairagya rise as bhakti develops in our heart. So just like I was explaining that the seed of mayic desires is burnt by our love to Shri Krishna, in this shloka, Vedavyasji is explaining that jnana, which means knowledge, true spiritual knowledge, like knowledge of Vedas, knowledge of Gita, knowledge of Vedant, not theoretical knowledge, but practical, experiential knowledge, true wisdom, what we call not just jnana, but vigyan. That knowledge is received automatically to the extent that our mind is attached to Shri Krishna. It happens automatically, just like you eat. When you eat, what happens? Do you have to, independently of your eating, do you have to supplement eating by thinking, okay, now what has to happen in my stomach? Which gastric juices have to be secreted in my stomach in order to digest the type of food I just ate, and then how does it go into the small intestine, and from there, how is it absorbed into the bloodstream, and then from there, how does it actually become blood, or muscle, or bone marrow, etc. You don't have to think about all of that. You just eat and it happens automatically. And through that, every cell of your body is nourished and strengthened just by eating. Similarly, you don't have to supplement the practice of bhakti with any other path or practice. All you have to do is lovingly attach your mind to Shri Krishna. And the experiences that come through the path of bhakti, experiences meaning your experience of your love for Shri Krishna, of his closeness, your experiences in Rupa Dhyan, through that you gain actual knowledge, practical gyan, and automatically you get virakti as well. Virakti means detachment from the world. So you see, those who think that, oh, okay, bhakti is fine, you're attaching your mind to Krishna, okay. Well, it's not just a casual thing. By attaching your mind to Shri Krishna, you gain true spiritual knowledge, and your mind gradually detaches itself from the world. So these two great things, which are held in such high esteem by spiritually minded people, knowledge and detachment, they develop automatically by practicing bhakti. To whatever extent our mind is attached to Shri Krishna, to the same extent jnana and vairagya develop in the mind. So I'll briefly explain in Hindi as well. Yahan bataya gaya hai ki bhagwan mein aasakti hona choti cheez nahi hai, bahut badi cheez hai. कुछ भोले लोग समझते हैं कि हाँ भक्ति तो आसक्ति है और भगवान के मार्ग में आसक्ति छोड़नी है, विरक्ति और ज्ञान चाहिए, भक्ति तो अटैचमेंट है, कुछ भोले लोग ऐसे कहते हैं. यहाँ कृपालु जी महाराज समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, संसारी आसक्ति दुख का मूल है, लेकिन भगवान में आसक्ति होना, उससे तो सारी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं. केवल भगवान में आसक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप पैदा होते हैं, क्योंकि जितनी आसक्ति होती है भगवान में उतनी अंतःकरण शुद्धि होगी और अपने आप अनुभव हो जाएगा कि भगवान हैं, हमारे साथ हैं, उनको देख सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, ये महसूस होता है रूप ध्यान में जब हम साधना करते हैं. तो उससे सचमुच ज्ञान होता है, क्योंकि फिर हम मानते हैं. पहले ज्ञान तो शाब्दिक ज्ञान होता है, मतलब हमने सुना है, हमने जान लिया है कि भगवान हैं, सर्वव्यापक हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमने सुन लिया, पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन माना नहीं. लेकिन अब जब हम साधना करते हैं और ये महसूस होता है, तब हम मानते हैं कि हाँ सचमुच ऐसा है, मैंने इसका अनुभव किया है, इसकी अनुभूति हो गई है, भले ही दिव्य दर्शन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, तो अब मानने लगा. और मानने का मतलब है सचमुच समझ लिया. ये जो तत्व ज्ञान है वेदों में, शास्त्रों में, उसमें क्या लिखा है, वही दो तीन बात बार 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 अलग अलग रूपों में बताए गए हैं कि भगवान तुम्हारे हैं, ये संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं. ये तो हमने बहुत बार सुन लिया है, लेकिन कभी माना नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है. तो जितना अटैचमेंट होगा भगवान में, उतना ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाएगा. और एक और चीज होती है वैराग्य, विरक्ति. क्योंकि जितना भगवान से प्रेम होगा, उतना आनंद मिलने लगेगा, और जितना सच्चा आनंद मिलने लगेगा उतना मन अपने आप हट जाएगा संसार से, क्योंकि उसको अब असली ज्ञान है कि हाँ सचमुच पहले मैंने जाना कि भगवान में आनंद है, संसार में आनंद नहीं है। अब अनुभव हो गया है थोड़ा बहुत, तो अब विश्वास हो गया है, अब मैं मान भी सकता हूं। इसलिए अपने आप संसार से वैराग्य होने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि बस भक्ति करो और कोई अलग से मार्ग न योग ज्ञान तपस्या वगैरह कुछ नहीं करना है, बस भक्ति करो, भगवान से प्यार करो और अपने आप ज्ञान और वैराग्य मिल जाएगा, ऐसा बताया गया इस दोहे में। अगले दोहे में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, हमारा मन प्राकृत है, मायिक है, माने वो माया से बना है, और भगवान तो सच्चिदानंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, केवल अधिकारी भगवान को देख सकता है, सोच सकता है, इंद्रियों से ग्रहण सकता है, केवल अधिकारी ऐसा कर सकता है। और अधिकारी कौन है? जिसके पास दिव्य इंद्रियां हैं, जिसकी भगवत प्राप्ति हो गई है। तो ज्ञानी भी जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, किससे? अपने प्राकृत मन से ना। और हम भी जो भक्ति करते हैं हम साकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, राम कृष्ण उनका ध्यान हम करते हैं। तो जैसे निराकार ब्रह्म सच्चिदानंद है, वैसे ही तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, वेद बताता है कि श्री कृष्ण का शरीर भी सच्चिदानंद है। तो न ज्ञानी अपने ब्रह्म का ध्यान कर सकता है अपने प्राकृत मन से, और न भक्त अपने भगवान का ध्यान कर सकता है अपने प्राकृत मन से, क्योंकि भगवान का शरीर तो दिव्य है और हमारा मन मायिक है, तो उस मायिक मन में भगवान का दिव्य रूप कैसे बनाया जा सकता है? असंभव है। मान लो कि दोनों का मन शत प्रतिशत शुद्ध हो गया, ज्ञानी भी, ज्ञानी का भी, भक्त का भी। ज्ञानी अपनी समाधि से, मतलब वो निराकार ब्रह्म के ध्यान करने से वो समाधि में चले जाते हैं, उसमें रहकर धीरे 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 मन शुद्ध हो जाता है, बहुत जन्म लगते हैं उसमें, लेकिन पहुंच सकते हैं वहां तक कि पूर्ण अंतःकरण शुद्धि हो गई। और भक्त उससे ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो वही है, अंतःकरण की पूर्णतया शुद्धि। तो भक्त ने अपने साकार ब्रह्म राम कृष्ण के ध्यान करने से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, वो भी 100% शुद्ध हो गया, ठीक है। तो क्या शुद्ध मायिक मन में भगवान का ध्यान बनाया जा सकता है, भगवान का रूप बनाया जा सकता है? नहीं। न मलिन मन में संभव है, न शुद्ध मन में संभव है, न निर्मल मन में संभव है, क्योंकि अशुद्ध मन मायिक भी है, शुद्ध मन भी मायिक है, दोनों मायिक हैं। तो शुद्धि या अशुद्धि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक अंतर है ज्ञानी और भक्त में, वह यह है कि ज्ञानी को भगवान की कृपा नहीं मिलती, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है, निराकार ब्रह्म कृपा नहीं करते, कुछ नहीं करते, न सुनते, न देखते, न सोचते, न इच्छा करते, न करते, कुछ नहीं करते, तो कृपा भी नहीं करते। साकार ब्रह्म सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कृपा करते हैं, सृष्टि करते हैं, कर्म फल देते हैं, सब कुछ साकार ब्रह्म करते हैं। तो ज्ञानी जब समाधि में हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, उनको कृपा नहीं मिल रही है, भले ही वो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृपा नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता। तो अपने प्राकृत मन से क्या वो सचमुच निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहा है? नहीं, असंभव है। न साधक वाले ज्ञानी और न सिद्ध वाले ज्ञानी, जिसने पूर्ण अंतःकरण शुद्धि की है। लेकिन भक्त जब रूप ध्यान करता है, हमारी साधना है रूप ध्यान करना, श्री कृष्ण का रूप अपने सामने खड़ा करना, ये हमारी साधना है। हाँ, श्री कृष्ण आ गए हमारे सामने, देखो उनके बाल कैसे हैं, उनका मुकुट कैसा है, उनकी मुरली कैसी है, उनके चरण कैसे हैं, ये सब हम ध्यान कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हाँ सचमुच हैं हमारे साथ, आ गए। जब हम ये करते हैं तो हमको कृपा मिलती है, क्योंकि ये साकार ब्रह्म है और ये तो कृपा करने पर तुले हैं, उनको बस कोई भी एक्सक्यूज चाहिए, कोई भी बहाना उनको चाहिए, देखो पूतना आई उनके पास मारने के लिए, फिर भी उन्होंने बहाना ढूंढा कि हाँ ये तो मेरी माँ हो गई, क्योंकि मैंने इनका दूध पी लिया, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं और उस के आधार से कृपा करते हैं। तो हम लोग तो रूप ध्यान करते हैं, यदि कोई कहता है कि लेकिन ये असली रूप ध्यान नहीं है, तुम्हारा मन प्राकृत है, भगवान की कृपा कैसे मिलेगी तुमको प्राकृत मन से रूप ध्यान करने से? नहीं नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं मैं मानता हूं, मुझे बहाना मिल गया, अब तुमने कोशिश की है, तुमने चेष्टा की है, बस उतना ही चाहिए मुझे, तुमने चेष्टा किया, मैंने कृपा किया। तो हमको कृपा मिलती है जब हम रूप ध्यान करते हैं, इसलिए हमारा बनाया हुआ रूप पूरा प्राकृत नहीं है। जितनी श्रद्धा है, जितना अटैचमेंट है भगवान में, उतनी कृपा मिलती है, और कृपा जो है वो स्वरूप शक्ति है, दोनों एक ही हैं। कभी कभी हम कृपा शक्ति कहते हैं, कभी कभी हम स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो ये स्वरूप शक्ति दिव्य शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, पर्सनल पावर, वो समा जाती है हमारे अंतःकरण में धीरे धीरे। जितना रूप ध्यान हमने किया है उतनी कृपा मिली है, उतनी स्वरूप शक्ति समा जाती है हमारे रूप ध्यान में, तो वो परसेंटेजेस में होता जाता है। 10% समा गई, 20% समा गई, 50% समा गई। तो जितनी स्वरूप शक्ति समा गई हमारे अंतःकरण में, उतना असली रूप ध्यान हम करते हैं उनकी कृपा से। तो वो केवल कल्पना नहीं है, सचमुच श्री कृष्ण है हमारे रूप ध्यान में। ये अंतर है ज्ञानी और भक्त में। इसलिए कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि प्राकृत मन ते होता है ज्ञान इन प्राकृत ध्यान, कि ज्ञानी का ध्यान तो पूर्णतया प्राकृत है, लेकिन भक्त मन हरि कृपा ते होत दिव्य सचमान। जब हमारा मन 100% भगवान से शरणागत हो जाता, उसका मतलब क्या हुआ कि 100% अटैचमेंट हुआ, और उसका मतलब है कि 100% स्वरूप शक्ति समा गई। तो हमारा मन मायिक नहीं रहा, वो दिव्य हो गया है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, ददामि बुद्धि योगम तम। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं दिव्य दृष्टि भी देता हूं, दिव्य मन बुद्धि भी दे देता हूं। कैसे? उस स्वरूप शक्ति से। वो जो प्राकृत पदार्थ है, जो हमारा मन है, वो सूक्ष्म है लेकिन फिर भी प्राकृत पदार्थ तो है, पंचमहाभूत का है। उसका नेचर एकदम चेंज हो गया। जैसे आपने पारस लिया, ओके, पहले आपने कुछ फेरम लिया है, लोहा, लेकिन वो लोहा एकदम रस्टेड है, बहुत गंदा है। आपने उसको प्यूरिफाई किया है, उसको स्टेनलेस स्टील बना दिया है, लेकिन तभी भी लोहा है ना। उसका जो नेचर है वो तो बदला नहीं, वो पहले भी फेरम था, अभी भी फेरम है, लेकिन आपने तो ये किया है कि जितना मलिनता था उसमें, उसको निकाल दिया, प्यूरिफाई कर दिया उसको। तो वो रस्टेड फेरम था, आपने उसको स्टेनलेस स्टील बना दिया, लेकिन अभी भी फेरम है। लेकिन अब आपने पारस मनी उसमें छुआ दिया, अब वो सोना बन गया। तो ज्ञानी अपने मन को प्यूरिफाई कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, उसको रस्टेड फेरम से स्टेनलेस स्टील बना सकता है, लेकिन भक्त जो है वो उस फेरम को सोना बना देता है। वो नहीं बनाता है, भगवान बना देते हैं अपनी स्वरूप शक्ति से। तो हम साधक लोग भी उस स्वरूप शक्ति युक्त धीरे धीरे होते जाते हैं, और जब हम पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तब हम सिद्ध हो जाते हैं, तब हमारा मन स्वरूप शक्ति का रूप बन जाता है, वो भी सच्चिदानंद बन जाता है। तब हम भगवान का असली दर्शन कर सकते हैं और भगवान का असली ध्यान कर सकते हैं। सो आई ब्रीफली रिकैप दैट इन इंग्लिश, दैट जस्ट एज सम पीपल मिस, दे अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ भक्ति बाय थिंकिंग इट्स अ सिंपल अटैचमेंट ऑफ द माइंड टू गॉड, but as we learned in the previous doha, that attachment to God is so great that it automatically develops true spiritual knowledge and mental detachment from the world, just by attaching our mind to God. In this Doha, Sri Kripaluji Maharaj has explained that even the meditation of the one who does bhakti, the one who meditates on the personal form of God, is not purely mayic. Although the mind is mayic, our mind is made of maya, both the mind of the bhakt, the one who is devoted to the personal form of God, and the mind of the jnani, the one who is worshipping God's impersonal form. But the difference is that since Nirakar Brahm, formless God, doesn't grace, doesn't do anything, so the jnani, whether the jnani's heart is partially pure, or even when it reaches the state of full purity, he is never truly meditating on formless God, because God is divine and our mind is material. But in the case of the devotee, since our mind, although our mind is mayic, but since we're meditating on the personal form of God, we're meditating on Shri Krishna and he graces us, therefore, to the extent our mind is attached to him, we receive some of that grace in the form of his personal power called Swarup Shakti, which gradually begins to permeate our mind, soak into our mind like a dry sponge can start to soak up water that's dripping into it. So on the basis of that Swarup Shakti, we're actually able to visualize Shri Krishna, meaning it's not a pure imagination when we visualize him in our Rup Dhyan. We're actually seeing Shri Krishna. And the more our mind purifies, the more we attach it to him, the more of that Swarup Shakti we receive, and it increases. As the percentage increases, the reality of our meditation goes on increasing, until we reach the point of 100% surrender to him. And at that point, our mind is completely impregnated with Swarup Shakti, and its mayic characteristic, its mayic nature is actually finished for good, and it becomes divine. So the bhakt with his divine mind, in the end, can actually visualize the real divine form of God and see God face to face. And before reaching that ultimate state as well, in whatever percentage we're surrendered to God, we are actually visualizing him. He's really there in our meditation. Whereas the jnani never gets a divine mind, so he in fact never is able to do chintan of real divine nirakar brahm. Not in his stage as a sadhak, and even after attaining the state of complete heart purification, he, even at that point, doesn't receive a divine mind, even though he's jivan mukt. So on the basis of his pure material mind, he experiences some kind of blissful state, but his mind never becomes divine. And when he leaves his body, his mayic mind, whatever was left of it, which is called lesha vidya, that is also removed. And he leaves his body, leaves his mind and senses, which all merges back into maya, and he merges into formless God. So the jnani actually never experiences God directly in the way that the bhakt does. So we have to understand this. This is a highly technical, but it's important to understand it so that we understand the greatness of bhakti. Bhakti should not be thought of as something that, you know, you do after you retire, or it's something the ladies do when they get together and do bhajans. Some people have this ignorant view of the path of bhakti. No, bhakti is supreme. It's the most powerful way of joining your mind with God and thus purifying your mind. So that's why Kripaluji Maharaj covers all of these points in these beautifully written and important dohas. Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. 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 Jai Radhe, Jai Radhe. Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna, Prakrit man te hot hai gyanin prakrit dhyan radhe radhe Bhaktan man hari kripate hot divya sach man radhe radhe Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. 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 In the next Doha, Shri Kripaluji Maharaj again explains about the power of bhakti. Some people make the argument that, you see, we have this panchkosh, we have triguna, trikarma, tridosh. These are different types of bondage on the soul. Panchkosh are five layers, prakrit, mayic layers, covering the soul. Like sheaths, you can say. Each one is increasingly subtle. The first one is the least subtle. It's called annamaya kosh. That's our physical body. We have five layers. So becoming more and more subtle, you have pranamaya kosh, manomaya kosh, vijnanamaya kosh, and anandamaya kosh. These five layers that include our subtle senses, our prana, our mind. These are all the layers of bondage covering a soul. In certain scriptures, it's described that these five layers of material bondage, called panchakosh, they have to be burnt. Then the soul can be liberated from its trikarma, triguna, tridosh. You have to burn these five layers. And how is it burnt? By practicing yoga. You practice yoga and there's one agni. It's called yoga agni. A fire that burns at the higher levels of yoga. When a yogi has progressed to the higher levels of his practice, that fire gradually, one by one, burns these kosh, eliminates these mayic sheaths which bind the soul. So some people fear that if I don't do yoga, or if I don't follow the path of jnana, how will I eliminate these five sheaths, this panchakosh? Kripaluji Maharaj says not to worry. In fact, the very same is said in the Bhagavatam. Jarayatyashuya kosham nigirna manalo yatha. Just like in your belly, there's a jataragni, the fire of digestion that burns in the belly. You put things in there, you eat, and what happens? That fire burns them up and digests them so they can be assimilated into the body. In the same way, there is a virahagni. There's a fire of separation for Shri Krishna. You can imagine it something like this. You know, when if something has made you very unhappy, you're really suffering, aapko bahut dukh mil raha hai, phir aap rote hain, you're feeling so upset, and then you just cry. You feel a warmth in your chest. It doesn't happen every time you cry, but when you're feeling extremely upset about something and then you cry. When you cry, it causes a release. And through that release, somehow you feel some kind of warmth in your chest, and then you feel a relief. You feel much better. That's the only comparison I can give for a purely material thing to what this virahagni is like. Viraha means the longing for Shri Krishna. Viraha ka matlab hai Shri Krishna se milne ki ichha. When you desire someone, you desire to be with them, that's called longing. That longing is called viraha because there's a heat associated with it. In devotion, this heat is very highly regarded. This heat of viraha is one of the most valuable things that we have. Why? Because it has the power to burn all the impurities of the heart, and it has the power to burn our panchakosh. How do you get this viraha? You have to develop your desire for Shri Krishna. You have to develop the feeling of longing. I want to meet him. Where is he? When will he come to me? I want to be with him. Just like in the same way that you desire for your child, or your husband, or your wife, or your friend, you desire to be with them. In the very same way, you have to desire for Shri Krishna. You have to desire to be with him. When you truly desire him in this way, then there's a heat that develops. You won't notice it at first, but the more devotion you do, jitni sadhana karoge, jitna roop dhyan karoge, utna wo Shri Krishna sama jate hain aapke antahkaran mein, aapke hriday mein. Aur sachmuch ye viraha paida ho jayega. Aur aap mehsoos karenge ki jab unka dhyan karenge ki kuch yahan ho raha hai. There's a warmth. Ek agni paida ho gayi hai andar. Wo viraha ka shuruaat hai. Uska antim jo stage hai, Mahaprabhu ji ne uska nirupan kiya hai. Jab unhone kaha, yugaitam nimeshen chakshusha pravrishaitam shunyaitam jagat sarvam govinda virahename. उन्होंने कहा अपने अष्टपदी में कि मेरे अंदर उतना विरह है, इतना विरह है कि अश्रुधार लगातार होता है. मेरी आंखों से अश्रु बह रहे हैं लगातार. और सारा संसार मेरे लिए शून्य है, कुछ नहीं है मेरे लिए, केवल एक इच्छा है हमारे हृदय में, उनसे मिलना है, श्याम सुंदर से मिलना है. तो वो अंतिम अवस्था है. महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस अवस्था में एक क्षण युग के समान लगता है. ये वे बढ़ा के नहीं बता रहे हैं, सचमुच जो वास्तविकता है ऐसे बता रहे हैं कि उस विरह की अवस्था में ऐसा सचमुच लगता है कि एक क्षण, वन सेकंड, लगता है कि एक युग है. युग सबसे छोटा युग कलयुग है, 432,000 वर्ष का. सोचो एक क्षण इतना लंबा लगता है जब उस अवस्था का विरह आ जाती है. वहां पहुंचना है हमको. वो हो जाएगा. पहले पहल हमको रूप ध्यान करना है, मन भगवान में लगाना है, इस पर बार बार ध्यान करना है कि वही मेरे हैं, वही मेरे हैं, वे मेरे सब कुछ हैं, मेरे प्रियतम हैं, उनका रूप बार बार बनाना है. फिर विरह पैदा हो जाएगा अपने आप उनकी कृपा से. आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ कुछ जल रहा है अंदर, और वो जो ताप है विरह का ताप वो बलवान होता जाएगा, वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, और उसके कारण वो उतना वो ताप उतना तेज है कि आपके पंचकोश को पूरा जला देगा। तो आपको कुछ अलग से योग ज्ञान वगैरह नहीं करना है उस पंचकोश को जलाने के लिए, बस श्याम सुंदर से प्यार करना है और उनके विरह में अपने मन को डुबाना है, और उस विरहाग्नि में पंचकोश अपने आप जल जाएंगे और उनके साथ त्रिगुण सत्वरजतम, ये भी एक तरह का बंधन है, और त्रिकर्म संचित प्रारब्ध क्रियमाण, ये भी कर्म बंधन है, और त्रिदोष माने कफ वात पित्त, ये भी एक तरह का बंधन है, वो भी सब जल जाएंगे। माने पूरा ये सब अलग अलग तरह के मायिक बंधन है, जब माया से छुटकारा मिलेगा तो ये सब अपने आप जाएगा, और कैसे होगा, केवल श्री कृष्ण के विरह में। तो हमको बस व्याकुलता बढ़ाना है, उनके मिलने की व्याकुलता बढ़ानी है हमको, वो हमारा काम है, बाकी श्री कृष्ण करेंगे अपनी कृपा से। सो इफ वी कीप इंक्रीसिंग आवर लॉन्गिंग फॉर श्री कृष्ण, दैट विरह विल ग्रो इन आवर हार्ट विथ हिज ग्रेस, एंड द पावर ऑफ दैट फायर ऑफ लॉन्गिंग फॉर श्री कृष्ण विल बर्न आवर पंचकोश एंड इलिमिनेट द बॉन्डेज ऑफ कर्म, द बॉन्डेज ऑफ what we call tridosh, the three types of characteristics of our mayic body and personality, and triguna, the three qualities of maya. All the types of mayic bondage are burnt by this viraha, this intense longing for Shri Krishna, which starts off as a feeling of heat in the heart but reaches such an intensity that it makes even a moment without Shri Krishna feel like an age, feel like hundreds of thousands of years. It becomes so intense. And when it reaches that stage of intensity, then Shri Krishna is not far off. He'll be coming to meet us very soon. It's a gradual process of building up to that point. So more about the greatness of bhakti and the greatness of viraha we'll learn tomorrow when we sing further ahead. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. 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 Jai Radhe, Jai Radhe Radhe. Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe. Radhe. Krishna Jaya Krishna Jaya Krishna Krishna Jaya Krishna Krishna Jaya Krishna Jaya Krishna Hari Virahi Virahagate Panchakosha Jari Jai Radhe Radhe Virahagate Triguna Trikarma Tridosha Sab Apuni Jaya Nasaya Radhe Radhe Trikarma Tridosha Sab Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe 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 Bolo Lali Lal ki Srimad Sadguru Sarkar ki